ओम शांति। बाप दादा से मिलन मनाने जब बाबा के लाडले बच्चे इस पावन भूमि में आते हैं तो हृदय में एक ही बात होती है कि हम बाबा के अनमोल रत्नों से रूरिहान करें। हमारा प्यारा बाबा जौहरी है, चित्रकार है, शिल्पकार है। बाबा की आदि चैतन्य मूर्तियों में से एक विलक्षण मूर्ति हम सबके समक्ष है, आदरणीय विमला दीदी जी। हम सभी आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं एक हाथ की ताली से। आदरणीय दीदी जी की जी, आदरणीय दीदी जी साकार बाबा के आदि रतन हैं। डेरा इस्माइल वर्तमान पाकिस्तान में आपने लौकिक जीवन की यात्रा शुरू की। 15 साल की उम्र में आपने परमात्मा को पहचाना और मात्र 19 वर्ष की आयु में दिल्ली के कमला नगर में समर्पित सेवा शुरू की। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और गौरव की बात यह है कि आप दिल्ली की प्रथम समर्पित कुमारी हैं। आपने दादियों का सानिध्य प्राप्त कर 5 वर्षों तक दिल्ली में यज्ञ सेवा की। तत्पश्चात आपने आगरा में सेवा की, लता को वृहद रूप में संवारना शुरू किया। त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति आदरणीय दीदी जी वर्तमान में आगरा जोन की इंचार्ज हैं और लगभग 35 सेवा केंद्रों व उप सेवा केंद्रों एवं लगभग 200 गीता पाठशालाओं का अपने मधुर स्वभाव एवं एक्यूरेट प्रबंधन से लाभान्वित कर रही हैं। ऐसी महान ज्ञान गंगा से आज हम शीतल होंगे और सुनेंगे श्रीमत पर चलने के फायदे। आदरणीय दीदी जी
ओम शांति। आप परम सबका ये परम सौभाग्य है कि आज हम 18 जनवरी के इस चरण में हम सब यहाँ पधारे हैं। ये वैसे साल का भी नया वर्ष का नया पहला महीना है, तो नए वर्ष की भी मुबारक हो। तो 18 जनवरी हम सब बाबा से मिलन मनाएंगे। जब भी आप अपने यहाँ से चले तो आप सबके मन में, हम सबके मन में यही धारणा रहती है कि हम बाबा से मिलन मनाएंगे। इस बार पहली बार हम 18 जनवरी को बाबा से सन्मुख मिलन मनाएंगे। बाप और दादा दोनों ही कंबाइंड हैं। जब बाबा को याद करते हैं तो ब्रह्मा बाबा के चरित्र और कर्तव्य भी याद आते हैं, क्योंकि जो बाप ने श्रीमत दी उस श्रीमत को प्रैक्टिकल जीवन में जो फॉलो करके दिखाया वो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। आज 18 जनवरी का शब्द ही लें 1 और 8, तो 1 क्या दिखाता है आप सब जानते हैं कि 1 को याद करने से संपूर्ण नीति से, याद करने से, श्रीमत पर चलने से हम 8 रत्नों में, 108 रत्नों में आ सकते हैं। उसके लिए हमें 1 की बात को याद रखना है कि हमें 1 रस स्थिति को भी धारण करना होगा। आज हमारी स्थिति ऊंची है, कल नीची, किसी भी हालत में डाउन नहीं जाना, सतयुग से लेकर तो अब तक हम नीचे गिरते आए, लेकिन अब हमें ऊंचाई जाना है, चढ़ती कला में ही जाना है, उड़ती कला में ही जाना है। इस स्थिति को, एक रस स्थिति को कभी भी डाउन नहीं होने देना। एक की मत पर हमें चलना है। कहते हैं मत भी अनेक प्रकार की होती है, देव मत है, मानव मत है, लेकिन हम बच्चे किस बात पर चल रहे हैं? श्री मत पर चल रहे, जो सर्वश्रेष्ठ श्री मत है, हमें सर्वश्रेष्ठ बनाने वाली है, ऊंचा बनाने वाली है। हम ऐसी एक के मत पर ही चल रहे हैं और एका नाम ही बाबा के अंदर, ब्रह्मा बाबा के अंदर क्या था, एका नामी के अवतार थे। शुरू में यज्ञ में हम देखते आए हैं कि बाबा ने हम बच्चों को कैसे एका नामी सिखाई। साकार में हमने देखा, शुरू शुरू में आए तो कोई भी अन्न का एक दाना भी वेस्ट नहीं करते थे। अगर रात की कोई भोजन बच गया है तो उसके कैसे लड्डू बना करके फेलवानी बनाकर बाबा हमें खिलाते। हर रीति से एकानामी के अनाज का एक दाना भी, कणा भी मोहर के बराबर है। उसको बाबा हमने देखा था कि जैसे कोई सब्जी काट रहे हैं तो कोई ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन बाबा कहते थे नहीं बच्चे, ये एक एक दाना मोहर है, इसमें तो बहुत सारी निकला। तो हम प्रैक्टिकल में देखते थे बाबा कैसे एका नामी के अवतार थे। और अंत में भी हम बच्चे जानते हैं कि क्या वो लोग होगा, जबकि मिले भी बंद हो जाएंगी, जो आज कहते हैं कितनी चतियों का कपड़ा भी पहनना पड़ेगा, वो समय भी हमें एकानामी करनी होगी। तो एकानामी और एक मत पर हम सब चल रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि एक और आठ 18 है। कहते हैं कि गीता के भी 18 अध्याय होते हैं और जिसमें लास्ट में यही होता है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई। और श्रीमत पर चलने से ही हमें फायदे ही फायदे हैं, न चलने से नुकसान ही नुकसान है। आज कहते भी हैं कि श्रीमत से ही किस्मत बनती है। कोई कोई अपनी किस्मत का ज्योतिषियों को दिखाते रहते हैं, देखो हमारी किस्मत कैसे है, क्या है, तो हम क्या कहेंगे, तुम किस मत पर चल रहे हो? देखें, हम मानव मत पर चल रहे हैं। श्री मत पर चलने से हमारी किस्मत श्रेष्ठ बनती है, महान बनती है। ये स्वयं ही देख सकते हैं कि हम कितना श्री मत पर चल तो रहे हैं, लेकिन कितना श्री मत पर चलते हैं। आज इसी वाणी से जो आज इतने ऊंचे ऊंचे महान आत्माएं बनी हैं, महारथी बने हैं, वो किस कारण से बने हैं? पूरी श्रीमत को पालन करने से आज वो इतने महान बने। आज लक्ष्मी नारायण के चित्र देखते हैं, मंदिर देखते हैं, इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर जिसमें मूर्ति केवल लक्ष्मी नारायण की, श्री कृष्ण की, देवी देवताओं की होती है, लेकिन आज उनसे पूछा जाए ये बने कैसे, किस आधार से ये बने जो आज इतने पूजे जा रहे हैं, इनका गायन हो रहा है, इतनी आरती होती है, विधि पूर्वक होती है, तो उसका आधार ही कही कहेंगे कि उन्होंने पूर्व जन्म में संगम युग में उन्हें संपूर्ण नीति से बाबा की श्रीमत को पालन किया। आज अमृत वेले से लेकर रात्रि तक ही हमें श्रीमत मिली हुई है। और ऐसे तो बहुत से बच्चे हैं जो अमृत वेले उठते भी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कई बच्चे नेमिनाथ आकर नियम तो पालन कर लेते हैं, लेकिन वो एक पावरफुल योग, वो बिंदु रूप का योग और वो ज्वालामुखी का योग, जिसको कि आज किसी भी ऐसे देखते हैं, अनेक महात्माओं के चित्र भी देखते हैं, तो कैसे समाधि में दिखाते हैं। और जब आप योग युक्त होकर के बैठते हैं तो आपकी स्थिति, आपका चेहरा कितना श्रेष्ठ होता है, ऐसा देखने से ही लगता है बहुत योग युक्त बैठा है, बहुत इनकी एक स्थिति एक तार बाबा से लगी हुई है, जो आज कहेंगे कि पूरी बैटरी चार्ज हो रही है। तो किस प्रकार में 5000 वर्ष की बैटरी चार्ज करनी है तो पावरफुल योग तो लगाना ही होगा। तो इस प्रकार से अगर हम जो भी श्रीमत है उसको एक्यूरेट पालन करेंगे तो कहेंगे हम तीन चीजें धारण करेंगे, एक्यूरेट, एक्टिव और अट्रैक्टिव। कोई भी कार्य करें हम एक्यूरेट चलेंगे, जितना हम एक्यूरेट चलेंगे और एक्टिव बन जाएंगे। जैसे क्लास में कहते हैं कि बाबा हमेशा कहते थे बच्चे क्लास में टीचर के आने से पहले आना चाहिए, बाबा ने श्रीमत दी तो अपनी जान की दादी जी भी बताती हैं कि क्लास में थोड़ा भी लेट आए तो बाबा ने यही उनको श्रीमत दी कि टाइम पर आना चाहिए। तो उन्होंने संकल्प लिया था कि बाबा के आने से पहले ही हमें पहुंचना है। तो इस श्रीमत को पालन करने में आप सोचिए कितना एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे आपको कहीं ट्रेन पर जाना हो, टाइम ट्रेन का तो रुकेगी नहीं, आपको कैसे भाग भाग के तैयारी करनी होगी, मेहनत करके आप पहुंचेंगे जरूर ट्रेन पर, क्योंकि एक्टिव होना पड़ेगा आपको। इसी तरह से अगर हम ये संकल्प लें कि हमें पहले ही क्लास से पहले पहुंचना है, अमृत वेले भी एक्यूरेट योग लगाना है, जो भी हमें श्रीमत मिली है वो हमें एक्यूरेट करना है, तो आप जरूर हम एक्टिव हो ही जाएंगे। और एक्टिव होने से क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव तो हम बन जाएंगे कि हमारी आत्मा अट्रैक्टिव बन जाएगी। और तो शरीर तो हमारे देवी देवताओं जैसे सुंदर तो है ही नहीं किसी के, कितने भी आज एक्टर हो आज, और अपने देवी देवताओं से कहीं उनका हो सकता है भेंट, हो नहीं सकती। आज लक्ष्मी नारायण देवी देवता है कितने अट्रैक्टिव लगते हैं, तो उनको देखते ही हाथ जोड़ने लगते हैं, तो क्यों आज उनके अंदर अंत तक भी चित्रों के अंदर इतना आकर्षण है कि आज खींचे हुए हैं लाखों लोग। आप देखते हैं मंदिरों में लाइन लग जाती है, देवियों के मंदिर में दो दो दिन लग जाते हैं लाइन में लगे हुए, क्या अट्रैक्शन है उनके अंदर, जो आज इतने हम जाते हैं तो वही उन्होंने इतना अपने जीवन में वही त्याग तपस्या और सेवा इन्होंने की हुई है, आज श्रीमत पर संपूर्ण पालन किया है, जो आज हमें उनकी आज इस प्रकार मंदिर में पूजा भी होती है। इस प्रकार से बाबा ने भी एक बार वाणी में ये बोला था कि बच्चे विधिवत पूजा किनकी होती है, एक है कि रिवाजी, कभी कभी कोई कोई त्योहार होता है तो उनके मंदिर में जाते हैं, ये पूजा होती है, बहुत भीड़ लगती है, मेला लगता है, लेकिन कोई कोई 12 महीने जैसे आप देखते हैं मथुरा में बिहारी जी का या और मंदिर में, उनकी खाने की भी जो है वो भी दर्शन होते हैं, पहनने के भी दर्शन होते हैं, सोने के भी, माना हर चीज के। आज क्यों उनके ऐसे हैं कि उन्होंने शिव बाबा की याद में यादगार बन गए। आज उनके सब चलन को भी आज यादगार रूप में दिखाया। तो उन्होंने विधि पूर्वक अपने समय पर कार्य किया, सदुपयोग किया, जो आज उनकी इस प्रकार से पूजा होती है। तो बाबा कहते बच्चे, जो बच्चे विधि पूर्वक बैठते हैं, आज उनकी विधिवत सत्युग में उनकी पूजा होगी। इसी मूल्य से ही हम इस प्रकार से महान बनते हैं, प्रैक्टिकल उसको पालन करने से। मुझे इस पर एक मिसाल याद आ रहा है कि एक बार की बात है कि एक बच्चा था, वो उसके अंदर बहुत कमियां थी, माना जुआ भी खेलता था और शराब भी पीता था, माना जो होती हैं कमियां। वो कई महात्माओं के पास लेके गया लेकिन उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। तो वो सुना था कि एक महात्मा आया है, उसके सुन करके बहुत जीवन में परिवर्तन आ रहा है बहुतों के। तो उसको लेके गया, उन्हें कहा आते रहो तुम जब तक नहीं आए, एक महीना आता रहा। बाद में उसने कहा कि महात्मा जी हम इनको भी लेके आए लेकिन इनके अंदर जरा भी परिवर्तन तो आया ही नहीं, आपका इतना मेरा महीना मैंने इनको सुनवाया, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो उन्होंने कहा बैठो, उसको कहा कि आप तुम कैसे आए हो, कि कहीं से तो आए होंगे ना, घोड़े में आए, क्योंकि उन दिनों में गाड़ी नहीं तो वो बैलगाड़ी से आए, कैसे आए आप सभी भी यहाँ आए हैं, तो कोई एरोप्लेन से आए, कोई गाड़ी से, कोई कैसे, कोई अपनी गाड़ी से, कैसे कैसे आए हो ना, किसी साधन से आए हैं है? तो वो भी कहने लगा कि हम ऐसे आए। तो कहा अच्छा आप बैठो, यहाँ से आप तुम घर पहुँच जाओ लेकिन शर्त ये है कि हिलना डुलना मत, हिलना बिल्कुल नहीं, और यहाँ से तुम घर पहुँच जाओ, मैं अभी आता हूँ। वो गया, एक घंटे बाद आया तो बोला कि तुम घर हो आए, क्या लेंगे घर कैसे जाता, जो यहाँ तो बैठा हुआ हूँ, आपने कहा हिलना नहीं तो मैं बैठा हूँ, घर कैसे पहुँच जाता। तो कहा देखो तुम ये कहते हो जो मैं सुनाता हूँ उसका एक भी अक्षर पालन किया, उस एक धारणा को, ये केवल सुनने को तो नहीं बोला था, केवल मेरा भाषण ही सुन लेना, प्रवचन सुन लेना, उसको करना, तो आपने किया इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आज हमारे सामने हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, हमारा दिल कितना गदगद हो जाता है कि आज बाबा ने इतनी अच्छी वाणी सुनाई, इतना अच्छा हमारा हमने सुना, हमारा सबका मन प्रसन्न हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है बाबा की महावाक्य सुन के। लेकिन हम देखें हम उसकी अनुसार से कितना हमने पालन किया। हमारी बड़ी दीदी, मनमयी दीदी, बाबा की वाणी सुन के अंदर चली जाती थी, दरवाजा बंद कर लेती थी और 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद वो बाहर निकल के आती थी। दीदी जी आपने अंदर अंदर में आप क्या कर रहे थे, कि मैं वाणी का ये देख रही थी कि कितनी बातें बाबा के आधार से मेरे अंदर हैं, कौन सी नहीं है, उसको मुझे प्रैक्टिकल करना है, अंडरलाइन किया, तो आज सभी बाहर आई। प्रश्न उत्तर भी दादी दीदी जी निकालती थी, आज जो हम प्रश्न उत्तर वाणी के आज हम देखते हैं तो मनन करती थी। तो इसी प्रकार से, और मैं अपने नियम का भी बता दूं कि शुरू से दिल्ली से ही जब बाबा दिल्ली में आते थे तो आपको बताएं ठंडी में ही आते थे, हम कमला नगर से रजौरी गार्डन, आप सोचिए कितनी दूर है शक्ति नगर से, लेकिन हम रोज ही आती थी, एक दिन नहीं मिस करती थी, और उस पर लिख देती थी कि मुझे 10 वाली वाणी हमेर को सुनानी है। आज मैं डायरेक्ट बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ, सुनानी भी है और साथ में इसकी 10 पॉइंट मुझे लिख करके जीवन में धारण करनी, ये मैं अपना नियम शुरू से ही बना रखा है। तो मैं 10 को सुनाती थी, कहीं गीता पाठशाला में, कहीं ऐसे ही को सुनाने से भी याद हो जाता था, और उसमें से अंडरलाइन करके 2-3 पॉइंट मुझे जीवन में धारण कर। अभी भी मैं जब बाबा के महावा के सन्मुख के सुनती हूँ, खास करके उस पर लिख देती हूँ कभी जो भी, कि 11 बारी के 12 बारी मुझे इस महावाक्य को सुनना है और सुनाना है, और इसमें से विशेष कौन सी बातें हैं जो पूरे मुझे 1 महीने तक पूरी ही धारणा करनी है, ये एक नियम सा बना रखा है। तो कहने का भाव ये है कि जितना बाबा की हम श्रीमत को प्रैक्टिकल में हम धारण करेंगे, तो आप सोचिए कि बाबा भी कितना खुश होगा कि वास्तव में बाबा के दिल पसंद दिल तख्त नशीनम बनेंगे। तो बताइए कर्मातीत बनने में कोई देर लगेगी? आज इतनी बड़ी IAS की डिग्री लेते हैं, आज कौन पास होते हैं? 99 नंबर, 100 नंबर तो किसी के भी नहीं आते हैं, चलो 99 नंबर किसके आते हैं? हम देखते हैं पढ़ाई पढ़ने वाले कितनी मेहनत करते हैं तब उनके नंबर आते हैं, और बाबा कहते बच्चे ये तो इतना बड़ा पेपर है, इससे बड़ा तो कोई इम्तिहान नहीं है, और उसको हम कैसे हम धारण करें? तो उसके लिए तो हमें यही है बस, बाबा की श्रीमत कर जो बाबा ने कहा है वो हमें करना है। मेरे लिए कहा है, ये अर्जुन कौन है? अर्जुन के लिए साथ में गीता के साथ अर्जुन की महिमा क्यों है? अर्जुन जो ज्ञान को अर्जन करे, धारण करे, तो हम ही अर्जुन हैं। जो भी अर्जुन बने तो सोचे मेरे लिए बाबा ने कहा है। अगर हम अपने पर्सनली, जैसे हम एक एक शुरू शुरू में एक एक बाबा से मिलते थे, वो जिंदगी भर में हमें अब भी भूलता नहीं है कि बाबा ने मेरे लिए खास क्या बोला था, कौन सा वरदान दिया था, और अब भी हमें वो याद रहता है। तो इस प्रकार से जो भी वरदान है, श्रीमत है, उसको हम एक भी बात को आज 18 जननी पर विशेष रूप में, है ना, 2 या 3 पॉइंट वरदान के रूप में अगर हम संकल्प कर लें, दृढ़ संकल्प कर लें, तो हम जरूर उसको पालन भी करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। और बाबा की जो इच्छा है कर्मातीत फर्स्ट डिवीजन में आना है, नंबर 1 में आना है। कितनी बार बाबा ने विशेष रूप में कहा है बच्चे तुम्हें नंबर 1 में आना है, तो वो हमारा लक्ष्य जो है, जो हमारा लक्ष्य है बनने का, तो बन ही जाते। ऐसे कोई भी प्रोग्राम होता है, आपका लक्ष्य होता है हमें करना है, तो हो ही जाता है। तो आज हम बैठे हुए जितने भी भाई बहन है, संकल्प कर लें कि हमें बाबा की जो भी वाणी आएगी उसको हम एक्यूरेट, उसमें से चाहे 4 पॉइंट दें चाहे 5 रतन दें, वो हमें प्रैक्टिकल जरूर पारण करने। जैसे कि आपने देखा है एरोप्लेन में भी बेल्ट बांध देते हैं, और जब कहीं आते हैं तो गाड़ी में भी कहते हैं बेल्ट बांधो, तो क्यों? कि गिरते नहीं है। तो हम भी ये बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लें कि कुछ भी हो जाए अंडरलाइन कर लें ये 2-3 बातें जो बाबा ने शिक्षा दी है, श्रीमत दी है, मुझे पालन करना है। उसे हमें दृढ़ता की बेल्ट बांध लेंगे तो आज वही हम सौगात, सच्ची सौगात हम लेके जाएंगे यज्ञ से और बाबा से, और वो हमें संपूर्ण बना ही देगी। और यही बाबा चाहते हैं कि मेरी प्रत्यक्षा क्यों रुकी हुई है? बाबा की प्रत्यक्षा इस कारण से रुकी है, ज्ञान तो सबको मिला है कि हमारे चलन से, हमारे चेहरे से, हमारे कर्तव्य से, हमारे उससे हमारा छो होगा बाबा का, क्योंकि जब पर्दा खुलेगा तो क्या होगा, बाबा के साथ हम बच्चों की प्रत्यक्षा होगी। और दूसरी बात ये भी हम लक्ष्य रखें कि जो भी जैसे कोई गवर्नमेंट का आदेश आता है तो वो क्या होता है आप सोचिए, उसको कोर्ट का आदेश आता है तो क्या पालन नहीं करना होता, उसको तो करना ही पड़ता है। तो ये कौन है, सुप्रीम कहेंगे फादर है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है, जज है, सब कुछ है, बाबा कहते हैं ना, तो इससे सुप्रीम और तो कोई है ही नहीं, उसका आदेश है, उसकी श्रीमत है, वो मेरे लिए आई है, मुझे ही पालन करनी है और मुझे बन के ही दिखाना है। अगर इस प्रकार से हम एक तो श्रीमत समझेंगे, धर्मराज का डर समझेंगे तो हमें पालन होगी, और दूसरा आदेश पालन होता है स्नेह से, किसी से स्नेह होता है तो उसकी आज्ञा को पालन करना एक सहज ही लगता है, लगता है कि बाबा ने कहा है तो जरूर हमें उसको पालना ही है। जैसे कि मातेश्री का सुनते थे कि बाबा ने उनको हलवा बनाने का, सिंधी हलवा बनाने का ऑर्डर दिया, तो वो बता रहे थे कि गाड़ी तो चली गई, वो भाई तो चला गया, आप क्यों बना रहे, वो तो चला ही गया, लेकिन मामा बनाती रही और जब बना करके बाबा के पास ले गई तो बाबा ने उस एक भाई को फटाफट भेजा, जाकर बस पर भी ये दे के आओ उनको। तो जब उसको ये हलवा मिला तो कितना गदगद हुआ, बाबा ने मेरे मन की जान ली, मेरे मन में था कि इस बार मैं जरूर वहाँ मधुबन में ये हलवा खाऊंगा, बाबा ने ये भी मेरी आश पूरी कर दी, वो जीवन पर्यंत तक याद रखा। तो क्या किया, मम्मा ने श्रीमत को संपूर्ण रीति से पालन किया, आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आज श्री लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, यज्ञ माता के रूप में आज भी नंबर वन है और सदा ही रहेंगी। तो ऐसी हम भी नंबर वन जा सकते हैं जब हम श्रीमत को हम एक्यूरेट से पालन करेंगे, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? उसके लिए बस, तो इसीलिए बताया कि एक तो स्नेह से भी, जहाँ स्नेह होता है पालना करना कोई मुश्किल नहीं लगता, इसलिए कहते हैं स्नेह सहयोग और सद्भावना, तीन चीजें हमारे जीवन में हैं। जहाँ स्नेह हमारा स्वयं से होगा कि अभी सारे कल्प में एक ही मौका अभी वर्तमान में ये मिला है, कल्प मिलता है पर वर्तमान में तो अभी है ना, अब नहीं तो कभी नहीं, तो क्यों ना हम आज अपने से भी स्नेह है और अपने देवी परिवार बाबा से भी स्नेह है और अपने देवी परिवार से भी स्नेह है और ये बाबा के क्या कहेंगे मुरली से भी प्यार है, तो मुरली अर्थात बाबा की श्रीमत से हमें इतना ही प्यार होगा तो प्यार से हम क्या नई कुर्बानी देश के लिए, समाज के लिए क्या नहीं कुर्बानी करते हैं, तो बाबा के लिए क्या हम श्रीमत का पालन नहीं करते, अवश्य कर सकते हैं और ऐसा हम जरूर मानेंगे। और साथ में दूसरा है ही सहयोग, आज सहयोग के बिना तो कोई कार्य नहीं होता, कोई भी बड़ी हो बहन हो उसको सहयोग ही चाहिए, बाबा भी हम बच्चों का सहयोग ले रहा कहते हैं बच्चे तो आप सब मेरी भुजाएं हो, आप मेरे सहयोगी हो, तो हम सभी यही हमें सबसे बड़ा सहयोग दें कि हम श्रीमत को पूरा पालन करके दिखाएंगे, किस्मत को बनाएंगे। और सहयोग के साथ हमारी सद्भावना, श्रेष्ठ भावना सभी आत्माओं के लिए, सारी विश्व की आत्माओं के लिए, कि सब आत्माएं सुखी हो जाएं, सब आत्माएं दुखों से, बाबा का क्या आता है वाणी में, यही आता है कि सब मैं आया ही हूँ सबका दुख दूर करने, जीव जंतु जिसको क्या कहेंगे तत्वों का भी, तत्व भी बदल जाएंगे, सर्व कहते हैं भवंतु सुखिना सबका, तो हम बच्चे भी तो बाबा के साथ मददगार हैं, हम सब भी तो बाबा के साथ कार्य करा रहे हैं, बाबा करण करावन हार बन के हमारा ये कार्य कर रहा है। इसलिए हम सब यही सोचते हैं बाबा और ब्रह्मा बाबा भी जिसको कहेंगे पालनहार भी थे, तो वो तो आप देखिए दो चार बच्चों की पालना करते हैं। जब जिस समय वेगरी पार था तो कितने बच्चे बैठे हुए, उन सब की सोल भी पालना, आत्मा की भी, आत्मा को भी श्रेष्ठ बनाना। आज तो केवल दुनिया में तो केवल शरीर की और पढ़ाई की पालना कर सकते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाए स्वस्थ रहे, केवल यही देखते हैं। लेकिन ऐसा कौन देखता है कि ये मेरे बच्चे चरित्र में इतना महान बने, ये ऐसे इनके संकल्प श्रेष्ठ बन जाए। नेगेटिव तो बिल्कुल नेगेटिव संकल्प भी खत्म हो जाए, वचन तो बात छोड़ो, आप वचन तो हम बच्चों के मुख से ऐसे कहेंगे निकल ही नहीं सकते कि किसी को हम कड़वा बोले या कुछ बोले। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि 75 बच्चों के मुख से 9 इससे भी ज्यादा होंगे जिनके मुख से कोई ऐसा कटु वचन किसी के लिए नहीं निकलेगा। और बस अब आ रही है संकल्पों की बात, हमारे संकल्प भी ऐसे नेगेटिव ना चले किसी भी आत्मा के लिए, चाहे हमें किसी ने कष्ट दिया हो चाहे कुछ दिया हो। अब तो मैं प्रैक्टिकल देखती हूँ कि कोई भी संकल्प या कोई मुख से कुछ बात निकलती है तो वो प्रैक्टिकल हो जाती है, तो सब कहते हैं कि आपने बोल दिया सुबह हो जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा हमको विश्वास होता है, तो मैं हमको भी पता नहीं रहता कि हम नहीं कर रहे, ये हमसे अब बाबा हमें इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, इंस्ट्रूमेंट बना करके बाबा बुलवाता है। हम कहें ये हमारी कुछ बड़ाई नहीं है। आप सोचिए कि बाबा बड़ाई किसकी है, बड़े से बड़े बाप की है जो हमारे मुख से ऐसा कहलवाता है, किसी को कुछ ठीक हो जाता है, समस्या हल हो जाती है। लेकिन वो हम क्या समझते हैं कि ये बाबा ने कराया। कोई भी मेहमा है, आपने अच्छा भाषण किया, आपने अच्छा प्रोग्राम किया, तो क्या कहेंगे किसने कराया, करने वाला कौन है। कराने वाले को अगर हमें याद होगा तो कभी भी ना तो अभिमान आएगा किसी प्रकार का, किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे कि हो सकता है उनसे कोई भूल हो। और फिर बाबा कहते राजधानी बन रही है ना, सब अगर बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे अच्छे बन जाए फिर तो प्रजा कौन बनेगा, फिर दास दासी कौन बनेगा, ये तो राजधानी बन रही है, कोई कम भी बनेगा तो ठीक है उसका इतना ही पार्ट है। हम ये ना सोचें कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये आज नहीं तो कल बदल जाएगा। हर एक की अपनी अपनी स्टेज अनुसार अपनी स्थिति बनी जाएगी, पर मुझे क्या बनाना है, मुझे तो अपने स्वयं के लिए भी सोचना है कि आप बिल्कुल नेगेटिव को हम खत्म कर देंगे। इसलिए कहा जाता है कि अपना समय और स्थिति को जितना हम महान बनाएंगे, तो इसी पर एक मिसाल भी याद आ रहा है कि एक दफा कहते हैं किसी को एक दिन का समय दिया, केवल एक दिन का, एक दिन के लिए उसको महाराज राजा बना दिया जाता है, तो वो उस समय जो चाहे वो कर सकता है, जो आदेश चाहे वो दे सकता है। तो एक आदेश जिसको दिया गया, तीन राजकुमारों को दिया गया, तो एक ने तो अपना खूब महफिल मनाई, सबको खूब खिलाया पिलाया, चारों तरफ मौज बनाई खूब सारा, क्योंकि कितना पैसा था वो खत्म करना था। तो दूसरे ने जायदाद खरीद ली, क्या चलो आज खत्म हो जाएगा तो कुछ मेरा दूसरे दिन के लिए मेरे पास कुछ रह जाएगा, तो उसने अपने समय खूब खरीदारी कर ली। और तीसरे ने क्या किया, अरे मेरे पास तो बहुत है मैं क्या करूँगा। उनने क्या किया, जो जरूरतमंद थे उन सबको खूब दान दिया, जिसको जो चाहिए, जो कमी थी दिल खोल कर उनकी सेवा की, सबको खूब बांटा। जब दूसरे तीसरे दिन ये हुआ, क्या बताओ, जनता से ही पूछा गया, बताओ भाई इसमें से किसको राजा बनाया जाए, ये तो आप ही जानते हैं कि किसको कहा होगा जनता ने, जिसने सेवा की, जिसने सेवा की, औरों के प्रति परोपकार किया, अपना समय अपना धन धन मन उसमें लगाया, तो आज उसी को ही क्या बनाया, राजा बना दिया। और उनको नहीं बनाया गया तो उसका कारण उसने नहीं अपने स्वयं का सोचा, सिर्फ अपने शरीर के लिए या अपने लिए सोचा, और उन्होंने सबकी जनता के कल्याण के लिए सोचा। तो आज हमारे ब्रह्मा बाबा ने एग्जाम्पल बनकर विश्व कल्याण के लिए आज अपना तन मन धन लगाया। आज ये अभी संक्रांत काली जैसे थी, आज भी है, तो कहीं फिर 14 चीजों का दान करते हैं, बस कुछ ही तो दान किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सर्वस्व दान, एक भी कोड़ी न रखी घर में। कहते हैं ना, इसके लिए कहते हैं, शिव के लिए कहते हैं, धन धन भोले तूने तीन लोग दिए एक पल भर में, कोड़ी न रखी घर। तो ब्रह्मा बाबा ने भी एक कोड़ी भी अपने पास नहीं रखी, ये सोचा ही नहीं कि मेरे बच्चों को कुछ खिलाना है या मेरे बच्चों का क्या होगा, किसका क्या होगा, आज सर्वस्व लगा दिया। तो क्या है, आज भूखा मरता है क्या, देखो कितना बड़ा यज्ञ चल रहा है, ये किसके आधार से चल रहा है। आज हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं, तो कारण क्या, ब्रह्मा भोजन नाम क्यों पड़ा, दुनिया में भी ब्रह्म भोज कह देते हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले धन जो है वो ब्रह्मा बाबा ने लगा, पीछे सबने फॉलो किया, आज उसी नाम से आज हम ब्रह्मा भोजन की इतनी महिमा है। आज इसी प्रकार से बाबा ने अपना सब कुछ लगाया, यहाँ तक कि संस्कार भी जो है, पुराने संस्कार भी अर्पण कर दिए। आप देखते, हम तो देखते भी थे, हम लोगों ने तो, हम तो साथ रहे हैं बाबा के रजौरी गार्डन में, हम देखते थे कि बाबा उसमें जाली के किवाड़ में भी हम देखते थे 3 बजे उठ करके तपस्या करते थे, और तपस्या ऐसी एक्यूरेट सीधा आपने देखा है, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं और एकदम गहन तपस्या में कि कोई नजदीक नहीं जा सकता, कोई पूछ नहीं, ऐसे नहीं कि कोई आया तो देखने लग गए, नहीं, बिल्कुल ऐसी गहन तपस्या में देखा, उसके बाद क्लास में आते। ऐसे मातेश्री को भी देखा, कभी बाबा चले जाते थे तो वही मम्मा आती थी, इस प्रकार से हमने तो सारा प्रैक्टिकल में देखा है, वो नजारा हमारी सामने ही आता है कि किस प्रकार से बाबा ने अपना पूरा ही जीवन इसमें लगाया। यहाँ तक कि संबंधों में भी देखो तो पूरा उन्होंने अर्पण कर दिया। आज उस दृष्टि से अपनी यशोदा को, जो वाइफ थी, उसको भी बच्ची के रूप में देखा, निर्मल शांता को भी आज बच्ची के रूप में। आज देखो कितना बड़ा काम था यज्ञ का, उस समय कहते हैं कि हर एक को नंबर वार सब काम करना पड़ता था, निर्मल शांता दादी को भी आज एक टाइम बर्तन साफ करने की भी ड्यूटी मिली। तो आप सोचिए, जब 300 के बर्तन कितने बड़े होंगे, तो उसके अंदर खड़ी होकर के वो जैसे बर्तन मांज रही, जिसने कभी जीवन में बर्तन नहीं मांजे, बाबा ने भी देखा कैसे बच्ची इतनी मेहनत कर रही है और जरा भी इसके मन में ख्याल नहीं है। और यहाँ तक कि आपने इसमें भी सुना होगा कि एक बार बाबा ने संदेशी से आदेश दिया कि आज उनको ठंडे पानी से, इन दिनों में, और वो भी बर्फ डाल करके आज उनको स्नान करना है। तो उनका प्रैक्टिकल में, उनके बाथरूम में बाल्टी ठंडे पानी की बर्फ डाल के रखी गई, और वो जब रखी गई और नहाने के लिए जाने, ब्रह्मा बाबा का भी पेपर था, उनकी भी तो लड़की है, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी साक्षी होकर देख रहे थे, लेकिन जब वो नहाने लगी तो रोक दिया गया। संदेशी ने कहा नहीं, नहाना नहीं है, केवल ये पेपर था कि इस आदेश को पालन करने के लिए वो तैयार है या नहीं, तैयार होती है कि नहीं। तो आप देखिए तो किस प्रकार से वो तो एवर रेडी थी, पास हो गई। हम सबके आगे भी कभी बाबा ऐसा करा आदेश दे। बीच में बाबा ने एक बार हम सबको यही आदेश दिया था कि सेंटर बदली करने हैं ना, एक महीने के लिए। सब कई बच्चे ऐसे हैं, हमने भी किया था, एक्यूरेट अपना चले गए। कई बहने नहीं कर पाए वो आदेश को, तो ऐसा भी बाबा कर सकता है। जब देने वाला दाता दे रहा है तो ले भी सकता है, उसका ही चीज है, उसकी अर्पण। तो हम बच्चों के कोई भी पेपर आ सकता है, अंत में तो पेपर आएंगे ही, पांच तत्वों के भी पेपर आएंगे, ब्राह्मण परिवार से भी आएंगे, ये सब पेपर जो हमारे आएंगे, तो हमें क्या होना होगा। पेपर समझेंगे तो पास हो जाएंगे, और पेपर नहीं समझेंगे कहेंगे इन्होंने आदेश दिया, इन्होंने दिया, तो हम नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए बाबा अंत के समय में कड़े से कड़ा, जब बाबा तो कहते हैं बच्चे अंत में एक सेकंड का पेपर आएगा, एक सेकंड का पेपर आएगा, और बहुत छोटा पेपर आएगा, और वो हमें एक्यूरेट वाले के बाबा एकदम कहेंगे स्टॉप, माना एकदम बुद्धि को एक सेकंड के अंदर सब बातों से हटा करके एकदम निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, उस समय एकदम सब संकल्प छोड़ के, और हम एक सेकंड में भी ऊपर पहुंच जाएं, बुद्धि को एकाग्र कर लें, और जितनी देर बाबा कहे वो उतनी देर हम एकाग्र हो सकें। कोई संकल्प ना आए, ना क्या काम करना है या किसको याद करना, कुछ भी ना आए, जैसे वो चिड़िया की तरह, जैसे अर्जुन को अंत में क्या याद आया है कि मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सब कहते हैं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस चिड़िया की भी आंख दिखाई दे रही है। तो आज देखिए वो अर्जुन ही एक केवल पास हुआ, क्यों पास हुआ, उसे अंत में कुछ भी याद नहीं आया, एक वही। इसी प्रकार हमें भी अंत में केवल बाबा ही याद आएगा, न मान न प्रतिष्ठा न कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम अंत के समय में ये नहीं कि आप तुमने कितने सेंटर बनाए, नहीं, सिर्फ हमारी अवस्था कैसी निर्विघ्न रही, हमारे सेंटर बाबा कहते हैं बच्चे निर्विघ्न सेंटर बनाओ, निर्विघ्न ब्रह्मा कुमारी बने, निर्विघ्न भाई बहन बने, जो अपने जीवन को ऐसा निर्विघ्न बनाए, जो आज कितने किस्से हम लोग दादी दीदियों के आगे परेशानी करके उनको सामने ले जाते थे, तो आज आप देख भी रहे हैं इतनी उम्र में हमारी दादियां अभी भी हमारी कितनी सेवाएं कर रही हैं। मनसा सेवा तो हम तक सब तक पहुंचती है, सबको अनुभव होता है कि नहीं दादी जी दीदी जी हमारे साथ हैं, क्योंकि मनसा सकाश हमको मिल रहा है हम सबका। तो हम सबकी भी यही शुभ भावना होनी चाहिए कि हम निर्विघ्न होकर दिखाएं सेंटर को भी, हम जितनी हम मर्यादा को पालन करेंगे, कि मर्यादा में एक्यूरेट रहेंगे तो विघ्न आएंगे ही क्यों। मर्यादा को आज हम नीचे लाने से ही विघ्न आते हैं, और नहीं तो कोई विघ्न ही नहीं है। किस प्रकार का निर्विघ्न बनकर दिखाएं, तो आज हम यही दृढ़ संकल्प करें कि हम खुद भी निर्विघ्न बनेंगे, अर्थात पूरी मर्यादा को पालन करेंगे, कि आज जो समाज देखता है कि आज कितने भी आज देखते हैं कि आज इतना बड़ा महात्मा था उसका क्या निकला, उस महात्मा का ये निकला, और लेकिन हम बच्चों का कहेंगे नहीं ये तो पावन है, पवित्र आत्माएं हैं और इनके बाहर अंदर से कुछ नहीं है, प्योरिटी के सिवा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा जो प्रैक्टिकल हमारा जीवन किसी भी रूप में हमें कोई चेक करे, चेकिंग करे, तो यही निकले कि हीरा तो हीरा ही है। हीरे को कितना भी कोई परखे, कितना भी उसको सोने को कितना ही परखे, लेकिन वो तो कुंदन ही रहेगा। इस प्रकार से हम बाबा के सामने हम दिखाएं कि हमारा जीवन ऐसा श्रेष्ठ हो, तो आज हमारी ये इसी विश्वविद्यालय का नंबर वन सारी दुनिया में नाम बड़ा होना ही है। और कौन करेगा, हम ही तो करेंगे। और उसके लिए हम यही अभी 18 जनवरी पर विशेष रूप में दृढ़ संकल्प करें कि हम बिल्कुल पर चिंतन या पर किसी की कमी को हम देखेंगे ही नहीं, वर्णन नहीं करेंगे। मामा देखो एक भी अवगुण कभी मुख से वर्णन नहीं करती थी, और हम भी नहीं करें और साथ साथ में श्रीमत का एक्यूरेट पालन करेंगे, तो यही बाबा की कहेंगे कि विशेष रूप से बाबा के दिल पसंद गिफ्ट होगी। और हम अपने दिल से यही हम सब करेंगे ना, हम बाबा को सामने, क्योंकि बाबा भी हमारी ये देखेगा कि वास्तव में ये बच्चे कैसे बाबा के लिए सब कुर्बान करने को तैयार हैं। सब जब सब कुर्बानी दे दी तो बाकी क्या रही, छोटी सी कुर्बानी है वो हम क्यों नहीं करेंगे। और बाबा का नाम हम बाला करेंगे, दादियों का नाम, यज्ञ का नाम हम बाला करेंगे, ऐसा हम श्रेष्ठ संकल्प लेंगे। तो आज के दिन की यही विशेष हम श्रीमत को 100% पालन करेंगे। तो हमें जो 100% करेंगे तो बताइए स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलेगी, 108 में क्यों नहीं आएंगे। हर एक अपने मन से सोचे कि मुझे 108 में आना ही है, तो आना है तो कौन रोकता है बताओ, कोई रोका है, कोई है दुनिया में कोई रोकने वाला? माया तो कुछ भी नहीं है, माया तो हमारे संकल्प है, व्यर्थ संकल्प ही तो है। जब व्यर्थ संकल्प है ही नहीं, बीच में दीवार है ही नहीं, तो हमें क्यों नहीं आ सकते, अवश्य आ सकते हैं। और ये भी तो जब हम कहते ही हैं सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो क्या इसमें सफलता नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी। केवल हमारे दृढ़ संकल्प लेने की बात है, हर कार्य हमारा सफल भी होगा और हम 16 कला संपूर्ण गुणों की माला कहेंगे पहन करके बाबा को दिखाएंगे, क्या कहेंगे, एक दो को पहनाएंगे, एक दो को ये माला पहनाते हैं ना, कभी कोई आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं तो क्या कहेंगे, तो हम कैसे माला पहनाएंगे, गुणों की माला, एक दो की गुणों की माला पहनाएंगे हर एक को। हर एक के अंदर बाबा ने विशेषताएं जरूर भरी हैं, कोई भी ऐसा बाबा का बच्चा नहीं है जिसके अंदर कोई विशेषता न हो। तो वो विशेषताओं को देखेंगे तो कमियां अपने आप निकल जाएंगी, और हम हर एक आत्मा को उस स्नेह की नजर से देखेंगे। और इसलिए और स्नेही बनकर के सारे विश्व में प्रेम के सागर के बच्चे हम प्रेम मूर्त बन जाएंगे और बाबा का नाम बाला करेंगे। 18 जनवरी पर अपने बाप दादा को हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, थैंक्स करते हैं, जिन्होंने हमें ऐसी श्रीमत शिक्षाएं देकर हमारा ऐसा जीवन बनाया। हम उनको कोटि कोटि क्या कहेंगे, बधाई कहें, श्रद्धांजलि कहें, हम बाबा को देते हैं और बाबा का नाम अवश्य वाला करेंगे। अच्छा ओम शांति। दो लाइन गीत कुछ इस बाबा ने एक झटके से अपना सब कुछ छोड़ दिया, इस बाबा ने एक झटके से अपना सब कुछ छोड़ दिया, उस बाबा की उंगली न छोड़ी हीरों का धंधा छोड़ दिया, उस बाबा की उंगली न छोड़ी, हीरों का धंधा छोड़। घर न देखा बा न देखा, ना देखा परिवार, घर न देखा बा न देखा, ना देखा परिवार, भाई न देखे बंधु न देखे, ना देखे रिश्तेदार, भाई न देखे बंधु न देखे, ना देखे रिश्तेदार, इस बाबा जीते जी तो इस बाबा ने सभी से मुखड़ा मोड़ लिया, जीते जी तो इस बाबा ने सभी से मुखड़ा मोड़ लिया, उस बाबा की उंगली न छोड़ी, हीरों का धंधा छोड़। जिस गुरुओं से कसमें खाई, जीवन साथ निभाने की, जिन गुरुओं से कसमें खाई, जीवन साथ निभाने, छोड़ दी उनसे मन की तारे, जोड़ के एक शिव बाबा से, तोड़ ली उनसे मन की तारे, जोड़ के एक शिव बाबा से, जीते जी तो इस बाबा ने सभी से मुखड़ा मोड़ लिया, उस बाबा की उंगली न छोड़ी, हीरों का धंधा छोड़ी।